कुंदकुंदाचार्य का समय सार हम पढ़ रहे हैं और उस समय सार की गाथा नंबर 19 को हम देख रहे हैं। कल जो ऐसी बात अपनी निकली थी, ये ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा कोई अलौकिक है, अचिंत है, कि उसके जानने में उसको पर की रंच मात्र भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये बात ऐसी होती है कि जिस समय, देखो अभी मैं आपको बताएंगे कि प्रत्येक द्रव्य में, यहाँ तो प्रत्येक द्रव्य की तो बात ही नहीं, यहाँ तो आत्मा में अनंत गुण है, तो अनंत गुण का परिणमन निरंतर चल सके, चले ऐसी उसमें द्रव्य तो गुण के निमित्त से ये कार्य उनका हो रहा है, कैपेसिटी उसकी ऐसी है कि निरंतर परिणमन होवे। तो अभी ज्ञान नाम का गुण है तो उसका जानना निरंतर चालू रहे ऐसा भी है। चारित्र गुण की भी परिणति या चारित्र गुण की पर्याय, उसकी अवस्था निरंतर बदले ऐसी भी वो गुण है। वो अब क्या होता है कि ये दोनों ही अनादि से है, तो जब तक उस जीव को सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता, अपने आत्मा का अनुभव नहीं होता है, तो वह चारित्र गुण का विभाव परिणमन चल रहा है, या तो वह राग रूप या द्वेष रूप कहो, या शुभ परिणाम कहो या अशुभ परिणाम कहो, ये तो निरंतर चलता ही रहेगा। अब यहाँ पर ये समझाते हैं कि जिस समय जो राग उत्पन्न होना है वही राग उस समय होगा, और उस समय जो ज्ञान की पर्याय जो है वह ज्ञान की पर्याय में उस राग का ज्ञान आना वो अपने स्वयं के कारण से, वो राग वहां पैदा हुआ इसलिए उसका ज्ञान हुआ ऐसी बात है नहीं। और ये बात समझाने के लिए हमें आईने के यानी दर्पण का यहाँ उदाहरण देकर बात समझाई थी कि दर्पण में जो कुछ हो रहा है वह दर्पण की अवस्था है, ना कि सामने रखे हुए या सामने दिखाई देने वाले ऐसे अग्नि की अवस्था है। ख्याल में नहीं तो क्या होगा, हम जरा सोचते हैं कि रात का टाइम होवे, पूनम की रात होवे, और हमारे घर में हमने ऐसे 25 थाल रखे हैं पानी भर के, तो हर एक में चांद के वहां प्रतिबिंब पड़ता है, तो क्या वह चांद की अवस्था है या वह पानी की है? ख्याल में है ना। वैसे यहाँ ज्ञान 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 यानी जानना 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 निरंतर चल रहा है, उसमें जो कुछ उस समय की योग्यता के अनुसार उस ज्ञान का जैसा परिणमन होना हो वैसा बाह्य में निमित्त हाजिर होता ही है, लेकिन निमित्त से कार्य नहीं होता है। यहाँ क्या समझाया कि राग जो है वह तो ज्ञात हो जाता है, लेकिन राग है, यहाँ कोई शुभ परिणाम चल रहा है या अशुभ परिणाम चल रहा है, जो कोई परिणाम चल रहा है उसके कारण यहाँ ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है। ऐसा अगर हम मानते हैं तो हमारा ज्ञान गुण एकदम जिसको हम कहेंगे कि परिपूर्ण परावलंबी हो जाएगा। और यहां जिनेंद्र भगवान तो हमें ऐसा बताते कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, प्रत्येक द्रव्य का प्रत्येक गुण स्वतंत्र है, और प्रत्येक गुण की अनादि काल से अनंत काल तक की पर्याय जो है वह भी स्वतंत्र है, पर के कारण नहीं। अभी हमने प्रवचन सार में पढ़ा था कि द्रव्य भी अकारणीय है, गुण भी अकारणीय है, और पर भी पर्याय भी अकारणीय है, यानी किसी कारण से वह पर्याय बनती हो तो वह द्रव्य का स्वभाव ही नहीं होगा। बहुत गहरी बात है ये। स्वतंत्रता जो है प्रत्येक द्रव्य की कहो या प्रत्येक पर्याय की कहो, वो इतनी स्पष्ट रूप से हमारे ज्ञान में आती है। तो हमें जो अहंकार या अभिमान चढ़ाए कि मैं परद्रव्य का परिणमन कर सकता हूं, वह नशा उतरे बिना नहीं रहे ख्याल में। तो ये जो हम कल बात देखते थे वो पढ़ते पढ़ते हम पृष्ठ क्रमांक 58 पर आए हैं। देखो पहले लाइन से ही पढ़ता हूं, दो तीन लाइन अपनी हुई थी कल। केम के रागना अस्तित्व थी ज्ञाननी परिणति नु अस्तित्व भिन्न छे, यानी वहां तो ये समझाए कि राग का अस्तित्व भिन्न है और ज्ञान का अस्तित्व भी भिन्न है, ख्याल में। यहां क्या समझा रहे हैं कि आ तो स्वतंत्र नो ढंडेरो छे, यानी ये जो विश्व में जो स्वतंत्रता है प्रत्येक द्रव्य की, उसका तो यहां बहुत जोर से डंका बजाया जा रहा है। भाई रागादि छे ते पर छे, अने पर्याय मा रागादि नु जे ज्ञान छे ए स्व छे एटले मारू छे। क्या कह रहे हैं? यह जो राग शुभाशुभ विकारी परिणाम जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो तो हमने उसको भाव कर्म में रखा था। और कल यह भी बात देखी थी कि जो नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म जो है वह मेरे नहीं है, मैं उनमें नहीं हूं। तो वो जो है तो कहते हैं ये जो राग है वह तो पर है, एक बात। और दूसरी क्या बात बताते हैं कि जे लेकिन वो पर्याय में जो मुझे राग का ज्ञान हो रहा है वह ज्ञान मेरा है, लेकिन वो राग मेरा नहीं। ए वो भेद ज्ञान स्वरूप अनुभव क्यारे था, यानी ऐसा भेद जो है, ये भेद ज्ञान जो है किससे? स्व से और पर से जब भिन्नता, यानी यहां स्व में तो रखा अपना ज्ञान और पर में को रखा तो राग, तो ये भेद ज्ञान स्वरूप अनुभव किसका? कि राग से रहित ऐसा जो मेरा स्वभाव भाव है उसका जो अनुभव हो वो कब होवेगा? क्यारे था के जारे रागादीनु लक्ष्य छोड़ी स्वना लक्ष्मा जाए, त्यारे इन्हें परिणति मां भेद ज्ञान था। क्या कह रहे कि ये राग तो है अभी और ज्ञान भी है, लेकिन राग का लक्ष्य छोड़कर, राग को गौण करके ज्ञान में मैं हूं ऐसा समझकर, ऐसी श्रद्धा कर उसी में जो एकाग्र हो जाएगा तो उसको भेद ज्ञान होगा कि राग से भिन्न में हूं। राग अभी चल रहा है, राग से बिल्कुल खाली हुआ नहीं है, राग होते हुए भी उसको गौण करके यानी उसको निग्लेक्ट करके उसके तरफ न देखते हुए जो मेरा स्वभाव भाव है उसी को हम जब देखते हैं, ये ऐसा कैसा होगा? आपके घर में बगीचा है मान लो, और बगीचे में बहुत सारे गुलाब के फूल हैं, तो जिस डाली पे फूल है उसी डाली पे कांटे भी हैं, ख्याल में। तो हम जब फूल को लेना चाहते हैं तो कांटों को गौण करके जो जिसमें कांटे नहीं है ऐसे ऊपर का भाग को लेते ना, ख्याल में ना? तो वहां है पर वो मेरे काम के नहीं है, इसलिए उनको गौण करते हुए जो वस्तु अपनी है उसी को हम स्वीकारते हैं। यहां तो कहते हैं राग ये मेरा स्वभाव नहीं है, राग तो मेरे से भिन्न है पर है, तो जो मेरा स्वभाव भाव जो ज्ञान स्वरूप मैं जो हूं उसी को हम मुख्य करके राग को गौण करते हैं, तब यह भेद ज्ञान होगा कि इससे मैं भिन्न हूं, तो उसको आत्मानुभूति हो जाएगी, ऐसा कह रहे। क्या कहें? देखो देखो कि रागा, फोर्थ लाइन पढ़ रहा हूं मैं, कि जारे रागादीनु लक्ष्य छोड़ी સ્વના લક્ષમાં જાય ત્યારે એની પરિણતિમાં ભેદ જ્ઞાન થાય. શરીર મન વાણી ઇત્યાદિ નો કર્મ અને રાગાદી કર્મ એ પરપુદગલના જ છે અને એ જ્ઞેયોને જાણનારું જ્ઞાન તે મારે મારું જ્ઞાયકનું છે. એમ ભિન્નતા જાણી એક જ્ઞાયકની સત્તામાં જ લક્ષ્ય કરે તેને ભેદ જ્ઞાન થાય છે. દેખો યહાં બિલકુલ ક્લિયર બાત બતા દી હૈ, એકદમ સાફ જો ખ્યાલ મેં આ જાય. ક્યાં કહેતે દેખો યહાં તો યે સમજા રહે હૈ કે અભી તો હમને આપકો બતાયા કે યહ જો શરીર હૈ મન હૈ વાણી જો હૈ ઇનકો ક્યાં કહા થા કલ યાદ હૈ આપકો? તીન તીન કો એક શબ્દ બતાયા થા, શરીર મન વાણી કો એક શબ્દ બતાયા થા. શાબાશ. નો કર્મ ઔર દ્રવ્ય કર્મ કિસકો બતાયા થા? જો આઠ કર્મ હૈ વો. और भाव कर्म में मोह और राग द्वेष, मोह कहो या मिथ्यात्व कहो और राग द्वेष यानी ये पुण्य पाप के परिणाम कहो, ये जो है वो भाव कर्म है. इन तीनों ही कर्मों से हम कौन से के तीन कर्म कि नौ कर्म द्रव्य कर्म और भाव कर्म. तो यहां क्या समझा रहे देखो देखो कि जारे शरीर मन वाणी इत्यादि नौ कर्म અને રાગાદી કર્મ યાની એ ભાવ કર્મ એ પર પુદગલના જ છે, એ મેરે નહીં હૈ, મેરે સે ભિન્ન હૈ ઔર પુદગલ કે હી હૈ. ક્યું સાહબ? એ રાગ દ્વેષ તો મેરે મેં ઉત્પન્ન હો રહે ના, ઔર આપ ઉસકો પુદગલ કે કહે રહે, યે કૈસા હૈ? યે અન્યાય હૈ. આપ કુછ ભી કહો ઔર હમ કહે માને એસા થોડી હૈ. તો યહાં તો કહેતે વો પુદગલ કે હૈ. ક્યું? કે પુદગલ કો દેખતે હુએ વે પેદા હુએ હૈ. ખ્યાલ મે? તો પુદગલ કે ખાતે મે ક્યું હમને ઉસકો ડાલ દિયા કે જબ જબ યહ જીવ પર કે તરફ દેખતા યાની પર કો જાનતા હૈ તો ઉસકે રાગ દ્વેષ કી ઉત્પત્તિ હુએ બિના રહેતી નહીં. ઔર ઇસ ઇન્દ્રિયોં કે માધ્યમ સે યહ જીવ જાનતા હૈ. હા જી,
ये जो बात हो रही है ना पर को जानते हुए उत्पन्न होता है, ये तो हमारी तुम्हारी रागी जीवों की बात कर रहे हैं. नहीं तो आप कहेंगे भगवान भी पर को जानते हैं, उनको भी राग द्वेष होना चाहिए. ख्याल है ना? ये बात किसकी हो रही है? अभी अज्ञानियों की बात यहाँ चल रही है,
जिन्हें अभी आत्मा का अनुभव नहीं
हुआ है. अप्रतिबुद्ध की बात हो रही है ना यहाँ, उसकी बात यहाँ बता रहे.
तो यहाँ पर ये समझा रहे हैं कि जब हम पर के तरफ देखते हैं तब हमें राग और द्वेष की उत्पत्ति हुए बिना रहती नहीं. जब अपने तरफ देखते यानी अपने स्व में एकाग्र होते हैं तब उसके राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होती. देखो अभी हम मान लेते हैं कि हम किसी भी पदार्थ को देखें, ये कैलेंडर को देखें या घड़ी को देखें, कैसी घड़ी है ये 1857 साल की पुरानी, कुछ अभी लेटेस्ट आजकल आती है, वैसी तो कोई रखनी चाहिए कि नहीं? ना अपने घर में है ना हमने पैसे खर्चे किए हैं, फिर भी हम किसी और को देखते हैं तो बोलते क्या है ये. या तो किसी को हमने गाड़ी देखी, अरे बहुत बढ़िया गाड़ी है साहब, गाड़ी हो तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसा करके हम कुछ भी बात अपनी छोड़ के पर को देखो वो हम उसको देखते हुए अंदर में कोई ना कोई राग द्वेष के परिणाम होते हैं. तो ये पुद्गल को लक्ष्य करने से होते हैं, इसलिए उसके पुद्गल के कह दिए. ऐसा कहने में कभी आया देखा कि नहीं आपने? हाँ मैं बताऊंगा, आप समझ लेना. देखो जब एक बूढ़ी माँ थी, उसको एक इकलौता बेटा था, वह बेटा हमेशा माँ को बहुत उसकी कालजी करता था, मतलब उसको बहुत सराहना करता था, उसके हमेशा ध्यान रखता था. लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो उसकी शादी करा दी. तो शादी करा दी तो क्या हो गया, आस्ते आस्ते वह अपने बीवी जैसा कहे वैसा सुनने लगा और माँ की कुछ बात देखने ही नहीं लगा. तब पड़ोसी में एक दूसरी बीड़ी रहती थी, उसने कहा कि कहो बहन आपका लड़का कैसा है? क्या है का लड़का? वो तो अभी अपने बीवी का हुआ. ऐसा सुना तो होगा कि नहीं? हाँ, अभी भले आप नहीं बने हो अभी क्या, हाँ, लेकिन ऐसा सुना तो होगा किसी का। तो अब मेरे को बताओ, वो अगर बेटा बीवी का हो जाए तो उसका पति रहेगा या पुत्र होगा? तो फिर भी उसको बेटा पत्नी का हो गया बोला ना उसने, वैसे क्योंकि वो उसके मतलब क्या कहते हैं उसके उसके अंडर गया कहते हैं हम जिसको अंग्रेजी में, कि अंडर हर कैपेसिटी, अपने माँ का नहीं सुने लेकिन अपने बीवी का सुने तो वो बीवी का हो गया। वैसे यह जीव राग द्वेष के परिणाम कब करता है कि जब पुद्गलों को देखता है, हा? और उसके बिना वजह, अभी समझ लीजिए कि किसी ने सफेद कपड़ा पहना हुआ है, अरे ये क्या सफेद है, इससे तो मेरा देखो कितना अच्छा सफेद है, और इसके सफेद अरे कितना दिन टिकने वाली है सफेदी, यानी कुछ लेना नहीं देना नहीं, फिर भी ऐसे मोह राग द्वेष के परिणाम यह जीव करता है। इसलिए यह जो पर को देखता है तब इसको राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, तो उस राग द्वेष को पर का ही कहा है, पुद्गल का ही कहा है। अब यहाँ वो बात बता रहे जो अभी आपको समझाई, तो कहते हैं कि राग कर्म वगैरह जो है पुद्गल ना छे, अने पहले क्या कहा, शरीर मन वाणी इत्यादि नो कर्माने रागादि कर्म ए पर एटले पुद्गल ना छे, अने ए ज्ञेयो ने जाननारू ज्ञान ते मारू न्यायिक नु छे, यानी इन ज्ञेयों को राग को, अब यहाँ विशेष रूप से राग को जानने वाला जो ज्ञान है वह ज्ञान मेरा है लेकिन राग मेरा नहीं है, ऐसा जो भेद ज्ञान है एम भिन्नता जानी, उसमें यह ऐसी तरह की भिन्नता देखकर एक न्यायकनी सत्ता माज लक्ष्य करे, यानी अपना जो ज्ञायक स्वभाव है, ज्ञायक यानी जानना रूप जो स्वभाव है, जानना देखना जो स्वभाव है, जानने वाला उसको ज्ञायक कहते हैं। जैसे हमने देखा है हम बस से जाते हैं तो बस चलाने वाले को हिंदी में क्या कहते हैं, क्योंकि क्या कहते कहेंगे तो आप ड्राइवर बोलेंगे, इसलिए मैंने हिंदी में क्या कहते पूछा, चालक, हाँ चालक कहते हैं यानी चलाने वाला, और जो कंडक्टर होता है उसको वाहक कहते हैं, यानी जो बहता है गाड़ी ले जाता है कंट्रोल करता है जो भी होता हो, यहाँ जो जानता है जो ज्ञाता है उसको ज्ञायक कहा। ये शब्द आपके लिए नए है इसलिए मैं समझा रहा हूँ, बाकी ये लोग तो जानते हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि एम भिन्नता जानी, यानी राग से मैं भिन्न हूं ऐसा जानकर एक ज्ञायक नहीं सत्ता में, ज्ञायक यानी ये जानन रूप जो मेरा स्वभाव भाव है, जो जानने वाला जो मैं हूं उसकी जो विद्यमानता है, उसकी जो हयाती है पना जो है, उस सत्ता में लक्ष्य करे यानी वही कॉन्सेंट्रेट करे तो तेने भेद ज्ञान थाय छे, यानी उसको अब भेद ज्ञान हुआ, यानी मैं और मेरे से भिन्न पदार्थ इनमें भिन्नता जानने में आई, आवो भेद ज्ञान रूप अनुभव का तो स्वयमेव, उसको निसर्गात कहा गया है, अथवा तो उपदेश थी यानी अधिगमात, जारे थाय छे त्यारेज ते प्रतिबुद्ध थाय छे, यानी यह जीव प्रतिबुद्ध यानी सम्यक दृष्टि कभी होता है, सम्यक ज्ञानी कभी होता है, ऐसा यह प्रश्न पूछा गया था, तब यहाँ पर इस बात का ऐसा उत्तर दिया गया है कि जब वह स्व और पर का भेद ज्ञान करता है तो वह भेद ज्ञान करने के लिए दो कारण हो सकते हैं। कौन से दो कारण हो सकते हैं अश्विन भाई, जानते हैं हम, अभी बताया था, पढ़ा भी था हमने, बोलो, निसर्गात और अधिगमज, यानी क्या होता है निसर्गात यानी बिना किसी के उपदेश से ही वह स्वयं आत्मानुभूति कर लेता है। वास्तव में तो और डिटेल में देखा जाए तो उसको तो पूर्व भाव में तो देशना तो मिली ही रहती है, लेकिन अभी तो इस भाव में ऐसा कोई उदाहरण आपको मालूम है कि निसर्गात जिसे सम्यक दर्शन हुआ है, हा? आपको मालूम है अभी अभी फिलहाल यहाँ, हाँ जो उनके तो कोई जो पंथ में थे ना उनको तो कहाँ वहाँ कोई उनको बताने वाला तो है, हाँ जी बिल्कुल, उनके बारे में मैं नहीं जानता हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन वो निश्चित है कि वो जिस पंथ में थे उनको तो वहाँ ऐसा साचा उपदेश देने वाला तो कोई नहीं था, तो वह तो निसर्गात। और जो दूसरे जो कोई है, यानी जिनका नाम वो क्या है, तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश लिखा है उन्होंने, या न्यालचंद जी, तो उनको तो स्वामी जी ने उपदेश दिया था, ख्याल में है। और वैसे देखा जाए तो बेन श्री बेन का भी नाम लिया जा सकता है। तो इस तरह से अधिगमा यानी किसी के उपदेश के कारण भेद ज्ञान हो जाए, यानी भेद ज्ञान करे तो स्वयं ही, लेकिन उसमें किसी का उपदेश निमित्त हो, और यहाँ करे तो स्वयं ही, लेकिन अभी फिलहाल इस भाव में कोई उपदेशदाता उनको नहीं मिलता है, इस अपेक्षा से यहाँ कहा गया है कि आवो भेद ज्ञान अनुभव का तो स्वयमेव अथवा तो उपदेश थी स्वयमेव के लिए निसर्गात लिखा है, और दूसरे के उपदेश से अधिगमत यानी जारे थाए छे त्यारे ते प्रतिबुद्ध था, यानी वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। थाय छे तो आज रीते बीजी कोई रीत नथी, निमित्त आवे तो उपादान मां कार्य थाय एम नथी। अभी मेरी इच्छा नहीं होते हुए भी अश्विन भाई हंसते ना तो मेरे को कुछ ना कुछ याद आता है, मैं तो चुप बैठूंगा। हाँ क्या कह रहे, देखो हमने तो ऐसा ही मान रखा है कि निमित्त आता है और निमित्त से ही कार्य होता है। यहाँ तो कह रहे निमित्त होय आवे, परंतु जो उपादान है एमा कार्य था एम नथी। यानी क्या समझा रहे हैं कि निमित्त था इसलिए कार्य होता ही है ऐसा भी नहीं। देख लेते हैं, कोई भी तीर्थंकर हो, हम आदिनाथ भगवान की बात लेते हैं, तो उनके तो समोशरण लगा था, ये तो बात सच्ची है, और उनके समोशरण में ऐसे कितने जीव हुए कि जो उनके पहले मोक्ष चले गए, और कई जीव ऐसे हुए कि उन्होंने उस समोशरण में ही मुनि दीक्षा धारण की, कई ऐसे भी रहे कि जिन्होंने पंचम गुण स्थान प्राप्त किया, और कई ने तो सम्यक दर्शन प्राप्त किया, और कई तो मारी चीजें से वैसे के वैसे मिथ्या दृष्टि रहे। तो यानी निमित्त तो था क्या, लेकिन कार्य होवे ही होवे ऐसा नहीं, ऐसा कहते निमित्त आवे तो उपादान मां कार्य था एम नथी। भाई उपादान ना काले स्व उपादान यानी अपने स्वयं की उस कार्य रूप परिणमने की योग्यता। तो कहते हैं उपादान मां उपादान ना काले स्व पर प्रकाशक परिणति स्वयं पोताती थाय छे ते काले निमित्त होय। पर निमित्त ने लईने निमित्त नी सत्ता छे माटे एने ज्ञान परिणति उत्पन्न थई एम नथी।
देखो यहाँ ये बताना चाहते हैं कि मारीचि का जीव, जो महावीर का जीव, आदिनाथ के समय में वो उनके भरत चक्रवर्ती का बेटा था, वही जीव जो महावीर स्वामी बाद में बने, तभी तो उनका कार्य नहीं हुआ। तो हम जब कार्य नहीं होता तो वहां कुछ निमित्त भी नहीं कहेंगे। निमित्त कब कहेंगे, जब कार्य हुआ। तो हमें मालूम है कि 10 भाव पूर्व शेर की पर्याय में दो चारण रिद्धिधारी मुनि आए और उनके उपदेश के कारण यहाँ उनके सम्य दर्शन हुआ, ये निमित्त का कथन किया जाता है। यानी उनके सम्यक्त्व में जो निमित्त था उस निमित्त से भी कार्य नहीं हुआ, ये बात यहाँ बताना चाहते हैं। यानी जो आदिनाथ निमित्त ही नहीं थे उनसे कार्य नहीं हुआ, ये तो बात ठीक, परंतु जिसका हम निमित्त तरीके से जिनका उल्लेख करते हैं, जिन पर निमित्त का आरोप आया है, जो उस समय वहां उपस्थित थे, ऐसे जो चारण रिद्धिधारी मुनि जिनके उपदेश से यहाँ हम कहते कि वो सिंह को सम्यक दर्शन हुआ, वो तो निमित्त का ज्ञान कराया है। उनको सम्यक दर्शन की अपनी उपादान की अन्य निज शक्ति से हुआ, तब सामने वे मुनिराज थे, उनका उपदेश भी हुआ था, फिर भी उस निमित्त के कारण वहां कार्य नहीं हुआ था, ये बात बताना चाह रहे।
यानी यहाँ पर तो बात ऐसी कि अनेक लोगों की ऐसी मान्यता है कि निमित्त से कार्य होता है, जिस टाइप का निमित्त मिलेगा वैसा कार्य होगा, ऐसा है ही नहीं। मेरे तो कार्य जो होता है वो अपने स्वयं की योग्यता जो है, स्वयं को कार्य रूप परिणमने की जो शक्ति है उसको यहाँ उपादान कहा गया, तो उसके अनुसार वह कार्य होता है। इन कहने में आता है कि बोल चाल में ऐसा कहने में आता है कि पर से कार्य हुआ, यानी निमित्त से कार्य हुआ। कल जो अपनी बात हुई थी ना, कोई एसीसी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आवे तो उसको पूछा जाए कि भाई तू क्यों कैसा हो गया रे ऐसा पास, इतना मार्क कैसे मिला है, तो वो कहता है कि मेरे माँ बाप के कारण से मैं पहला आया, या हमने फला फला गुरु से विद्या ली, तो उस गुरु की क्लास में तो सैकड़ों विद्यार्थी थे, कई तो फेल हो गए, ख्याल में है ना। तो उसको ऐसे वो कहेगा कि इनके यहां मैं गया था इसलिए मैं फेल हो गया, तो कोई सुनेगा क्यों उसका। लेकिन कोई कहेगा नहीं नहीं इनके पास गया इसलिए मैं पहला आया। अच्छा अच्छा, पागल लोग उसकी क्लास में अटेंड ज्वाइन हो जाते हैं, ख्याल है। यहां तो ये समझाते हैं कि कभी भी कार्य में निमित्त तो हाजिर होता है लेकिन कार्य कुछ नहीं करता है, और ये इसी बात को कंफर्म कराने के लिए यहां बताया है कि निमित्त होता है फिर भी उपादान में कार्य होगा ही, ऐसा नहीं है। तो यहां तो और जो पुरानी बात थी ना वो बात यहां पर ली है। देखो उपादान ना काले शू थाय छे, स्व पर प्रकाशक परिणति स्वयं पोतादी थाय छे, यानी यहां ज्ञान की जो पर्याय है वो स्व को जानने और राग को जाने, स्व और पर दोनों को प्रकाशक हो जाए ना, वो भी अपने स्वयं के कारण से होती है। ते काले निमित्त होए, राग वहां पर होता है पर निमित्त ने लईने એટલે राग ने लईने, रागनी सत्ता छे बाटे इने ज्ञान એટલે परिणति उत्पन्न थई एम नथी। ये कल जो आपका प्रश्न था ना उसका उत्तर है। देखिए यहां पर ये मैंने सारा बदली बदली करके पढ़ा है, या निमित्त की जगह मैंने राग राग रखा है, ख्याल में आए। यानी वहां राग का राग तो राग रूप से परिणमित हो रहा है लेकिन वो राग के कारण इसको ज्ञान हो रहा है, ये बात सही नहीं है, ये बात समझा रहे। अभी कहते हैं आज अर्थनु कलश रूप काव्य कहे, थोड़ा पीछे जाते हैं
पृष्ठ 50।
अच्छा हाँ वही है वही है। मालिनी
कथम अपि लभन्ते भेद विज्ञान मूलाम् अचलितम् अनुभूतिम् ये स्वतो वान्यतो वा प्रतिफलन निमग्नानंत भाव स्वभावैर् मुकुरवद विकारा संततम् स्युस्त एव।
देखो नीचे श्लोकार्थ दिया है, यहाँ कहते हैं जे पुरुषों यानी ये यानी जे पुरुषों स्वतः वा अन्यतः वा पोता थीज अथवा परना उपदेश थी, यानी अभी हमने देखा ना निसर्गात या अधिगमात, यानी पोता थीज अथवा परना उपदेश थी कथम अपि ही कोई पन प्रकारे भेद विज्ञान मूलाम भेद विज्ञान जेनु मूल उत्पत्ति कारण छे एवी अचलितम अविचल निश्चल, अचलितम का अर्थ उन्होंने निश्चल किया। अनुभूतिम पोताना आत्माती आत्मानी अनुभूति ने लभन्ते एटले पामे छे, क्या कहना चाहते हैं कि जो पुरुष स्वयं के अथवा दूसरे के उपदेश के कारण किसी भी प्रकार से भेद विज्ञान जिसका मूल उत्पत्ति कारण है ऐसे अविचल स्वयं के आत्मा की अनुभूति को प्राप्त होते हैं। ते एवं तेज पुरुषो मुकुरवत यानी दर्पण नी जेम प्रतिफलन निमग्न अनंत भाव स्वभाव ही पोतामा प्रतिबिंबित थेला अनंत भावोना स्वभाव होती संततम एटले निरंतर अविकारा विकार रहित स्युहु होये छे। यानी जैसा आईने में अनेक बातों का प्रतिबिंब आता है इमेज पड़ता है वैसे इस आत्मा में भी अनेक भाव प्रतिबिंबित होते हैं यानी जाने जाते हैं फिर भी पोतामा प्रतिबिंबित थयेला अनंत भावों ना स्वभावते निरंतर विकार रहित होय छे। ધ્યાનમાં જે જ્ઞેયોના આકાર પ્રતિભાસે છે તેમનાથી રાગાદિ વિકારને પ્રાપ્ત થતા નથી. યાને યે સમજા રહે હૈ કે ભલે ઉસમેં અનેક પ્રકાર કે મતલબ પરિણામ જ્ઞાત હોતા હૈ હોતે હો તબ ભી વહ જીવ અપને સ્વભાવ મેં હી એકાગ્ર હોતા હૈ, વો વિકાર કો પ્રાપ્ત નહીં હોતા. ફિર પૃષ્ઠ ક્રમાંક 58 પર આઈએ.
એટલે જ્ઞાન મેં કુછ પ્રતિબિંબિત હો, જૈસે દર્પણ મેં કોઈ ખરાબ ચીજ પ્રતિબિંબ હોને પર દર્પણ ગંદા હો જાતા હૈ, ક્યો નહીં હોતા હૈ ના? વૈસે જ્ઞાન મેં કુછ ચીજે જાણને પર, જૈસે રાગ કો જાના ગયા તો રાગ વિકાર સહિત હો ગયા કે નહીં હુઆ? કભી હુઆ હી નહીં, પરંતુ હમને ઉસકો વિકાર વાલા માના. યે અજ્ઞાની કી ભૂલ યહાં બતા રહે કે ઇતને અનંત પદાર્થો કો વો જાનતા હૈ, ફિર જાનને કે કારણ વો વિકાર વાલા નહીં હોતા. યે બાત યહાં ચલ રહી, જાનના યે વિકાર નહીં હૈ. હમ વો વિકાર કે સાથ એક મેં એક માન લેતે હૈ જ્ઞાન કો, અપને કો વિકારી માન લેતે હૈ. યહાં રાગ સે તો ભેદ જ્ઞાન કરા હૈ ને, તો જબ યે જ્ઞાન ઓર રાગ મેં ભેદ જ્ઞાન કરતા હૈ તો ઇસે પતા ચલતા કે યે જ્ઞાન મેં જો ભાષિત હો રહા હૈ વો જ્ઞાન હી હૈ, અન્ય કુછ નહીં હૈ. યે બાત આયેગી ભી ઓર.
પૃષ્ઠ ક્રમાંક 58 પર આયે હૈ શ્લોકાર્થ ઉપર કા પ્રવચન. અભી તો યે સંસ્કૃત ન પડતે હુએ કેવલ મેં ગુજરાતી પઢ રહા હું. જે પુરુષો પોતાથી જ અથવા પરના ઉપદેશથી કોઈ પણ પ્રકારે ભેદ વિજ્ઞાન જેનું મૂળ ઉત્પત્તિ કારણ છે એવી અવિચળ એટલે નિશ્ચલ પોતાના આત્માની અનુભૂતિને પામે છે. શું કહે છે કે જો કોઈ આત્મા પોતાથી જ એવું ભેદ જ્ઞાન પ્રકટ કરે એટલે રાગથી ભિન્ન જે ન્યાયક સ્વભાવ રૂપ નિજદ્રવ્ય તેનું લક્ષ્ય કરે તો તે અવિચળ એટલે કદી ન પડે એવી આત્માને અનુભૂતિને પ્રાપ્ત થાય છે. યાને યહાં તો કૈસી અનુભૂતિ લી હૈ કે જો અનુભૂતિ એક બાર પ્રાપ્ત હો જાય તો ઉસસે વહ ટૂટે નહીં છૂટે નહીં, યાને વહ દુબારા મિથ્યાત્વી નહીં હોવે એસી નિશ્ચલ અનુભૂતિને પ્રાપ્ત થાય છે. યાને ક્યા બતાએ, દેખો કહેતે હૈ અવિચલ, યાને જો વિચલિત નહીં હોતી, યાને જો છૂટતી નહીં હૈ, એસે કાયમ રહે કદી ન પડે એવી આત્માની અનુભૂતિની પ્રાપ્ત થાય છે. યે કબ હોગા, તો જબ ઉસકા જો ભેદક જ્ઞાન હૈ, યાને મેં પરપદાર્થોનસે ભિન્ન હું એસી ઉસકી જબ નિશ્ચિત રૂપ સે શ્રદ્ધા હો જાય, ખાતરી હો જાય, તબ યે બાત પોસિબલ હૈ, એસા કહેતે હૈ. ઓર ક્યા કહે રહે હૈ, ઉસમે ભેદ વિજ્ઞાન જો હોતા હૈ ઉસકે લિયે દો કારણ બતાએ હૈ, એક તો સ્વયં સે હો યા દૂસરે કિસી કે ઉપદેશ સે હો. અરે ભાઈ, અભી નીચે કી બાત હૈ. ચારે ગતિઓમાં રખડી રખડીને અનંત કાળ ગયો, ભ્રમણામાં ને ભ્રમણામાં અનંત ભવના અનંત અવતાર કર્યા. ક્યા કહે રહે હૈ, યે ચાર ગતિ જો હૈ, યે ચાર ગતિ આપ જાનતે હૈ કૌન સી હૈ? બહુત અચ્છા, હા બહુત અચ્છા. યે ચાર ગતિ જો હૈ, મનુષ્ય દેવ નરક ઓર તિરંજ, યે ચાર ગતિ મેં રખડ કે, યાને રખડના યાને ક્યા, એક બાર જન્મ લિયા ફિર દુબારા દૂસરી જગહ જન્મ લિયા, જન્મ મરણ જન્મ મરણ જન્મ મરણ એસા કરતે કરતે કિતના ટાઈમ ગયા, તો કહેતે અનંત કાલ ગયા. દેખો બાત એસી હૈ કે હમને અપને કો જો અપને કો પ્રાપ્ત પર્યાય મિલી હૈ કે ઉતના હી અપને કો માના હૈ, યાને અભી હમ છોટપન સે એસી અરેન્જમેન્ટ કરતે હૈ કે બુઢાપે મેં હમ સુખ શાંતિ સે જીએ, इसके लिए हम पैसा इकट्ठा करते हैं, सेव करते हैं, जो भी करते हैं, क्यों कि हमारा भविष्य काल अच्छा रहे. लेकिन यहाँ भूल क्या होती है कि उसने अपने को प्राप्त पर्याय जितना ही माना है. जैसा हम अभी नाम लेके बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा कि जैसा कहते हैं कि अंकुश, तो उन्होंने क्या माना है कि मैं 100 साल तक जीऊँगा. अभी तो 20 साल का हूँ, तो मैं तो अभी 20 साल 25 साल तक पढ़ूंगा, बाद में और एक 40 साल तो मैं उम्र के कमाई करूंगा, फिर 65 साल से 100 साल तक मैं आराम से जीऊंगा, यानी वो फ्यूचर प्लानिंग करता है। नाम इसलिए लिया कि आपको समझ में आए, ऐसा तो सभी जीव करते हैं। हाँ, अब क्या बात होती है, लेकिन जब उसको पता लगे कि मैं तो ये भव जितना ही नहीं हूँ, मैं तो अनादि काल से अस्तित्व में हूँ, कितना हो गया, अनंत काल गया अनादि से, और इसके आगे भी मैं अनंत काल रहूंगा, तब उसको ख्याल में आता है, अरे रे कि मेरा अस्तित्व इतना है, अनादि काल से अनंत काल तक मैं रहने वाला हूँ, तो फिर भविष्य के लिए कोई हमें प्रोविजन करनी चाहिए। लेकिन जब तक हमने ऐसा माना कि मैं अभी दिनेश इतना ही हूँ बस, अब मरने के बाद न मालूम क्या होने वाला है, जाने दो ना काय को सोचने का, अभी खाओ पियो मौज मस्ती करो, ऐसी टेंडेंसी हर एक की होती है। लेकिन यहाँ तो क्या बता रहे थे, चारे गतियों में रखड़ी रखड़ी ने अनंत काल गयो, ये परिभ्रमण करते करते अनंत काल गया, वो कैसा गया, भ्रमणा माने भ्रमणा मा, यानी भ्रमणा यानी भ्रम में, यानी विपरीत मान्यताओं में, वह करते करते भ्रमणा माने भ्रमणा मा अनंत भवना अनंत अवतार करया, यानी अनंत भव, यानी एक दो नहीं, और वह भी अनंत बार, यानी एक ही मान लीजिए कि ये जो मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य पर्याय भी उसने अनंत बार आज तक प्राप्त की है, नरक की पर्याय अनंत बार, देव की पर्याय अनंत बार, तीरंजी की पर्याय अनंत अनंत बार, फिर भी तो कहते हैं कि वो क्यों ऐसा हो रहा है, तो भ्रमणा के कारण, भ्रमणा यानी भ्रम के कारण, कौन सा भ्रम है साहब, तो अपने स्वरूप को नहीं पहचानना, यानी यहां इन्होंने बताया भेद ज्ञान के अभाव से, यानी मैं कौन हूं और पर कौन है इसका हमें बराबर अंदाज नहीं है, इसके कारण अनंत काल से अनंत भव के अनंत बार उसमें जन्म लिया, अवतार करें यानी अनंत बार जन्म है, ये राम अवतार कृष्ण अवतार वाला अवतार नहीं हो, ये गुजराती का अवतार का अर्थ है जन्म लेना, ये बधु भूली गयो छे, यानी ये तू सब भूल गया है कहते है। पन ए ब्रह्मणा भांगे एटले धूर थाय तो भवना अंत आवे एम छे, यानी अगर ये भ्रम को ही हम तोड़ देवे तो ये भव का जो परिभ्रमण हो रहा है, वो भव से भवांतर हम करते हैं, वो स्टॉप हो जाएगा, टूटे भांगे टूट जाए दूर हो जाए, एक एम भांगे यानी वो भ्रमणा कैसे टूट सकेगी, तो कहे छे के कोई पन प्रकारे एटले महापुरुषार्थ करीने पन स्वथी सीधो सीधोज भगवान न्याय को पर दृष्टि करता। अब यहाँ एक ही इलाज कौन सा बताया है कि अपने जो स्वभाव है यानी अपना आत्मा कैसा है, तो भगवान स्वरूप है, ऐसा जो भगवान आत्मा एनी ऊपर दृष्टि करता, यानी उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे लक्ष्य करेंगे, ते रागती भिन्न पड़ी जाय छे, कैसा कि जो ज्ञायक भाव है, यानी मैं ज्ञाता हूँ, मैं जानन देखन स्वभावी हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, राग मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसे जब अपने स्वभाव पर वह दृष्टि केंद्रित करेगा तो राग से भिन्न होगा, तब भेद ज्ञान होगा, तब वो भ्रमणा जो है कि मैं राग कर सकता हूँ और राग करना चाहिए, और राग यानी यहाँ तो हम शुभ भाव लेंगे, कोई ऐसा तो नहीं कहते कि अशुभ भाव करना चाहिए, सभी लोग ऐसा ही कहते कि अशुभ भाव छोड़ो और शुभ में आ जाओ, पाप परिणाम छोड़ो और पुण्य में आ जाओ, यहां तो कहते पुण्य हो या पाप हो दोनों ही इस जीव के स्वभाव भाव नहीं है, तो ये राग में सारा आ गया, तो ये राग से भिन्न पड़ी दे, यानी राग से भिन्न होकर कैसा शक्य है वह, तो कहते राग से भिन्न ऐसा जो अरागी अपना स्वभाव भाव है, तो अरागी का अर्थ क्या हो गया कि राग न करने वाला, तो फिर करता क्या है, तो ज्ञायक स्वभाव जो है, यानी जो मैं ज्ञायक यानी जानने देखने वाला ऐसा जो मेरा स्वभाव है उसमें दृष्टि केंद्रित करने पर राग से भिन्न हुआ हुआ जाता है, क्या कहते हो, होता है। मोक्षाधिकार गाथा 294 शिष्य प्रश्न करे छे के ये मोक्षाधिकार इसी समय सार का आगे वाला आने वाला है। अभी तो हम 19वीं गाथा पढ़ रहे हैं, ये 294 गाथा में ये प्रश्न आएगा कि आत्मा अने बंध बनने ने कई रीते छेदी शकाय छे। ये जो कर्म का बंध जो हो रहा है ना, वो बंध को हम किस तरह से वो तोड़ सकते, छेद सकते, यानी उसका निर्मूल कैसा कर सकेंगे। तेनु समाधान आचार्य देवे कर्यु छे के आत्मा अने बंधना नियत स्वलक्षणों थी स्वलक्षणों नी सूक्ष्म अंतसंधि मा एटले अंतरंग संधि मा प्रज्ञा छीनी ने सावधान थईने पटकवा थी एटले नाखवा थी मारवा थी तेमने भेदी शकाय छे, अर्थात जुदा करी शकाय छे एम अमे जानिए छे। क्या कहते हैं, वहां शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया था कि आत्मा और बंध, बंध यानी क्या है मालूम है आपको, बंध कैसा होता है, बंध की परिभाषा क्या है भाई, सात तत्वों में सीखा है कि नहीं तुमने? हाँ हाँ हाँ, क्या बताया? हाँ, और आश्रय शुभाशुभ विकारी भावों को हम यहाँ आश्रय कहते हैं, और वही भाव करते रहना वह है बंध। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, यह जो आत्मा जो ज्ञायक स्वभावी है, ज्ञाता स्वभावी है, और यह जो शुभाशुभ विकारी भाव में अटकने वाला जो बंध है, इन दोनों को हम जुदा कैसे कर सकेंगे। यानी यहाँ इन शॉर्ट ज्ञान स्वभावी आत्मा जो है, और उससे उसको यानी ज्ञान और राग, इनको हम कैसा जुदा कर पाएंगे, ऐसा ही प्रश्न है। क्या कहा देखो, आत्मा अने बंध बनने ने कई रीते छेदी सकाय छे, उसका छेद कैसा होगा, यानी उसको हम दो अलग अलग किस तरह बना पाएंगे। तो कहते हैं आत्मा अने बंधना नियत स्वलक्षणों नी, यानी उन दोनों का जो स्वलक्षण है, उन दोनों को जानकर समझकर, नियत यानी जो निश्चित है, ऐसे जो स्वलक्षण है, उन स्वलक्षणों में उनकी जो सूक्ष्म अंतसंधि है, यानी उन जो वो कहीं ना कहीं एक दो भिन्न भिन्न है ना, लेकिन साथ में है इसलिए वो एक में एक लगते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें बीच में संधि है, यानी आपकी भाषा में
जॉइंट 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 संधि यानी जॉइंट। संधिवाद शब्द सुना है ना, तो संधि यानी जॉइंट, यानी दो चीजें वहां ज्वाइन है, ज्वाइन है अर्थात दो भिन्न भिन्न, तभी तो हम कहेंगे ना दो ज्वाइन हुई है, तो उनको अपने अपने लक्षणों से भिन्न पहचानना है। ये छेदना इन्हें क्या करना है, तो ज्ञान के द्वारा उनको भिन्न पहचानना है, उसकी बात यहाँ चली। तो दोनों में जो कुछ छेद है, यानी जो कुछ ज्वाइंट है,
सांध है,
बंध है ना, बंधे हुए है, बंधे हुए यानी दो भिन्न चीजें है, और जहाँ बंध है तो उसका जो लक्षण हम पहचानेंगे, तो ये दो भिन्न है, ये हमारे ज्ञान में हमको भासित हो जाएगा, उसकी बात चल रही है।
क्या बता रहे, देखो ये दोनों की जो सूक्ष्म संधि है, अंत संधि यानी अंतरंग संधि मां प्रज्ञा छिन्नी ने, ये छिन्नी होती है ना, उसका क्या काम होता है, वो बड़े बड़े पत्थरों को दो टुकड़े कर देता है। किस तरह, कि वो पत्थरों में भी जो पर्वत में जो पत्थर मिलते हैं तो वो एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, उनमें बराबर जहां उनका जॉइंट होगा, जिसको हम सांध कहते हैं गुजराती में, उसको तिराड़ क्या बोलते हैं, तिराड़ जो भी होगा, वो जो संधि है बस उसी में वो छिनी रखेंगे और उसको जोर से मारेंगे तो उसके दो विभाग हो जाते हैं। वैसे हम देखते हैं, आप राजस्थान गए होंगे तो वहां तो बहुत बार ऐसा वो पर्वत के पर्वत में बराबर सुरंग रखते हैं, सुरंग समझते हैं ना, और उसको यहां से उड़ा गए तो सारे के सारे ऐसे बाहर बड़े बड़े पत्थर ऐसे पार्ट के पार्ट निकलते हैं, क्योंकि वो बन करने वाले जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं चिपके हुए ज्वाइंट हो गए, तो वो ज्वाइंट के अंदर वो बराबर उसमें सुरंग डालते तो अलग हो जाते हैं। वैसे यहाँ राग और ज्ञान ये दोनों भिन्न भिन्न है लेकिन एक दूसरे से चिपके हुए हैं। तो जिसके बुद्धि रूपी जो छिन्नी है उस छिन्नी को प्रज्ञा, प्रज्ञा छिन्नी कहा ना, क्या कहा, प्रज्ञा यानी ज्ञान, और वो ज्ञान रूपी छिन्नी से वो दोनों के संधि में हम जोर से पटके, जोर से मारे तो क्या होगा कि दोनों जुदे जुदे होंगे। यानी राग से भिन्न मैं ज्ञायक स्वभावी ज्ञान स्वभावी हूँ ऐसी इस जीव को खबर पड़ेगी। तो क्या कहते, प्रज्ञा छिनी ने सावधान थी ने, सावधान यानी कॉन्सेंट्रेट करके, नहीं तो यहाँ हम देखे उधर और यहाँ हथौड़ी चलाए तो क्या होगा, हाथ पे लगेगा। अच्छा वैसे राग से भिन्नता नहीं होगी, इसलिए सावधान थी ने पटकवाती एटले मारवा थी तेमने छेदी सकाय छे, अर्थात जुदी करी सकाय छे, एम अमे जानिए छे, ऐसा वहां आचार्य कहते हैं, ऐसा हम जानते हैं। एटले के प्रज्ञा एटले ज्ञान पर्याय ने रागती भिन्न करी ने पछी द्रव्य में एकता करवा थी, यानी अपने स्वभाव में एकत्व करने से पर ने एटले रागादी ने छेदी सकाय छे, आम स्वथी अथवा परना उपदेश थी कोई पन प्रकारे एटले महापुरुषार्थ थी जारे आ अनुभूति एटले ज्ञान रागनु लक्ष्य छोड़ी ने स्वद्रव्यना एटले न्यायना लक्ष्य जाय छे त्यारे भेद विज्ञान जेनु मूल छे एवी आत्मानी अनुभूति उत्पन्न थाय छे। यानी यहां पर यही बात समझाई है कि जब यह जीव राग से और राग और ज्ञान इन दोनों की भिन्नता जानकर राग को छोड़कर अपने स्वभाव में एकाग्रता करेगा, वो एकाग्रता करने के लिए भी दो कारण बताए, एक स्व के कारण या पर के उपदेश के कारण। लेकिन पर का उपदेश हुआ इसलिए पर मुझे कोई भेद ज्ञान करा देवे ऐसी बात नहीं है, भेद ज्ञान करना तो स्वयं को ही है, दूसरे के कारण भेद ज्ञान होगा ये बात है नहीं। उनका उपदेश जब हम स्वयं भेद ज्ञान करेंगे तब उनको कहेंगे कि नहीं भाई इनके उपदेश के द्वारा मुझे ऐसा हुआ, वो तो निमित्त का कथन है। तो इसलिए कहते हैं स्वथी अथवा परना उपदेश थी कोई पन प्रकारे एटले महापुरुषार्थ थी जारे आ अनुभूति एटले रागनु लक्ष्य छोड़ीने, आ ज्ञान रागनु लक्ष्य छोड़ीने स्वद्रव्यना एटले ज्ञायकना लक्ष्य जाय छे त्यारे भेद विज्ञान तेनु मूल छे एवी आत्मानी अनुभूति उत्पन्न थाय छे। ये इस तरह अपने आत्मा का अनुभव करता है। तो ये क्या कहा, भेद विज्ञान जेनु मूल उत्पत्ति कारण छे, एम केम कहूं, ऐसा क्यों आप कह रहे हैं। तो कहते हैं कोई एम कहे कि रागनी घनी मंदता करता करता एटले शुभ भाव करता करता अनुभूति थाय, तो ए वात बराबर नथी। कल जो बात निकली थी ना, लसन खाते 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 केसर के कस्तूरी का ढकार आ जाए, यानी यार राग करते करते धर्म हो जाए। क्या कहा देखो, एम कहे कि रागनी घनी मंदता करता, यानी बहुत मंद मंद ऐसा राग होगा एटले शुभ भाव करता करता अनुभूति थाय, अनुभूति यानी वितरागता कहो या आत्मा का अनुभव कहो, तो वो हो सकेगा कि नहीं, तो नहीं कहते, ऐसा कहने जैसा है। परंतु राग ने आत्मा ना भिन्न भिन्न लक्षणों जानी ने, यानी दोनों के हमने लक्षण जाने और राग नु लक्ष्य छोड़ी, यानी राग का लक्षण छोड़ दिया, प्रज्ञा छिनी एटले ज्ञाननी परिणति वड़े आत्मा ने रागादि बंधने छेदी नाखवा जुदा पाड़वा, जेने आवु भेद ज्ञान थाय ते आवी अविचल पोताना आत्मानी अनुभूति ने पामे छे। जिसको ये बात समझ में आई है और उस रूप से उसने भेद ज्ञान किया है तो उसके आत्मानुभूति होएगी। भगवान आत्मानी अनुभूति नु मूल कारण भेद ज्ञान कहूं छे, यानी भेद ज्ञान यानी दोनों में भिन्नता करना, इसी को भेद ज्ञान कहा है। पण व्यवहार साधन एटले शुभ राग ने आत्मानुभूति नु कारण कहूं नथी। जो आत्मा व्यवहार साधन शुभ कार्य नो निषेध आमायन आत्मा नहीं आमा व्यवहार साधन एटले शुभराग एनो निषेध आवी जाय छे। यानी आत्मानुभूति करते वक्त शुभराग बीच में भले आए लेकिन उसके कारण से आत्मानुभूति होती नहीं है, उसको छोड़कर ही वह शुद्ध परिणाम में जाएगा तो ही होगा। आ तो धीरा ना काम छे, यानी जो धैर्य रखता है उसी को ये प्राप्त होगा, ऐसा कहते हैं। पहला विकल्प द्वारा लक्ष्मा प्रतीतिमा तो ले के अंतर नो अनुभव वेद विज्ञान ना कारणे थाय छे। क्या कह रहे हैं, पहले में पहले ये तो श्रद्धा में लो, पहला जानो और बाद में पहला विकल्प द्वारा यानी ज्ञान के द्वारा। पहला कहते हैं कि लक्ष्मा यानी पहले ध्यान में तो लेना क्या, प्रतीतिमा यानी श्रद्धा में तो लेना क्या, तो कहते हैं अंतरनो अनुभव यानी अपने स्वयं का अनुभव वेद विज्ञान ना कारणे थाय छे। प्रतिभिन्न पाड़वाना कारणे थाय छे। वेद विज्ञान यानी क्या, कि दो चीजों में जुदा जुदापन जानना। इसमें भी एक थोड़ी सी बीच में बात ऐसी आती है, ये जो दो बातें हैं जिनको हमको जुदा जुदा करना है उसमें से एक पार्टी तो हम स्वयं होना चाहिए। जैसे क्रिकेट की मैच चलती हो, कौन सी, वर्ल्ड कप, तो वहां कोई जिम्बाब्वे और दूसरा कोई और कौन को कोई भी लो पाकिस्तान, वो दोनों की मैच चलती हो और उस जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की मैच चलती हो तो उसमें कुछ डिफरेंस होएगा कि नहीं, क्या होगा, हिंदुस्तान एक हम है, बोले वहां 11 लोग है वो रिप्रेजेंट करते हैं लेकिन वो हम है हा? और इनसे बाकी लोग जुदे हैं, लेकिन दो एक जिम्बाब्वे और एक कोई वेस्ट इंडीज है या कोई इंग्लैंड है तो कोई भी हारे ना कोई भी जीते हमें क्या है, लेकिन नहीं नहीं अभी ये सेंचुरी मारेगा वो इतना विकेट लेगा, ऐसा करके हम दोनों में ये हमारे ये पर ऐसे भेद विज्ञान करते। वैसे हमेशा भेद विज्ञान में दो पार्टियां जो होती है उसमें एक अपनी पार्टी होना आवश्यक है। तो यहां अपनी पार्टी कौन सी है कि ज्ञान स्वभाव, और पर पार्टी कौन सी है, राग। राग तो एक क्या कहते हैं जिसको हम जो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ जो है उनकी तो बात तो छोड़ ही दिए। क्या मैं आपसे पूछता हूं, आप बंबई में इतने साल से रहते हो, किसी ने ऐसा कभी माना है कि ये जो राजा भाई टावर है वह मैं हूं, या ये राजा भाई टावर मेरा है, दोनों में से कोई बात, अरे वो तो अत्यंत भिन्न पर पदार्थ है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि ये शरीर मैं हूं और ये मेरा शरीर, ये भी हो सकता है कि ये जो राग आ रहा है वो मैं हूं, राग करने वाला तो मैं हूं ना, या तो राग मेरा है। तो यहां तो मूल में ही काट रहे किसको, राग को, जो अल्टीमेटम है उससे नजदीक वाली और कोई बात नहीं। शरीर के बाद तो द्रव्य कर्म आएगा, आठ कर्मों की बात, और उससे भी नजदीक वाला ये राग है, क्योंकि द्रव्य कर्म जो है वह तो दूसरा पदार्थ है, पुद्गल द्रव्य है, लेकिन राग की उत्पत्ति तो अपने स्वयं में हो रही ना, लेकिन चूंकि वो मेरा स्वभाव भाव नहीं है विभाव है इसलिए उसको हटा दिया। नहीं बैठी ना बात, हाँ देखो बात ऐसी है कि आपने कल कैसेट लेके गई है, क्या बोलते है? सीडीज सुनी नहीं, कोई बात नहीं। तो अभी यहां तो फिर ऐसी बात है कि मैं और अच्छा पूछता हूं आपको, आपको अपने भगवान का स्वरूप कैसा है ये जानती हैं आप, अपने भगवान कैसे हैं, उनके लक्षण क्या है, इसमें कोई जानकारी है आपको, बोलो बोलो शमश, हाँ बोलो, हाँ और हाँ जी हाँ, वो सर्वज्ञ है सब जानते हैं, और दूसरी क्या बात है, वे वीतराग है। वीतराग का अर्थ आपने कल किया था, जिनका बीत गया है राग और द्वेष जिनका, ऐसे को वीतराग कहेंगे। हाँ तो जो अगर वह राग मेरा स्वभाव होगा तो राग मेरे से जुदा हो सकेगा क्या? तो हमारे भगवान वीतराग है और हम और वे एक जाति के हैं, जीव द्रव्य है, तो वे राग से जुदे हो गए हैं, तो जुदा होगा वही तो जुदा कर सकेंगे। यानी जो अपना नहीं होगा, बाहर से आया हुआ होगा, उसको तो हम जुदा करेंगे, लेकिन जो अपना स्वभाव ही है उसको कैसा जुदा कर पाएंगे? इसलिए यहाँ कहते हैं कि वीतराग भगवान का स्वभाव है, वे भी जीव है, मैं भी जीव हूँ, तो राग यह मेरा स्वभाव नहीं है। तो राग से भिन्नत्व करना यानी भिन्नपना करना, यही तो मूल बात है। और जब तक हम ये मानते हैं कि जो जिससे हमें दूर होना है, जिसको हमको निकालना है, उसी को हम ग्रहण करेंगे, उसी को पकड़ के रखेंगे, तो क्या हम अपने सही स्वभाव को प्राप्त कर पाएंगे? इसलिए यहाँ पहले भिन्नता किसकी करी है? राग से भिन्नत्व किया है, समझ में आए? तो इसलिए कहते हैं कि भगवान आत्मा ने अनुभूति नु मूल कारण भेद ज्ञान कहूं छे। ये भेद ज्ञान किससे करना है? तो राग से भेद ज्ञान करना है। पन व्यवहार साधन यानी शुभ राग ने आत्मानुभूति नु कारण कहूं नहीं, यानी शुभ राग करते करते आत्मा का अनुभव होगा नहीं हो, ऐसा कहा है। जो आमा व्यवहार साधन यानी शुभ राग नो निषेध आवी जाय छे, जब जब आत्मा की अनुभूति करते हैं तब तक राग को भी हम उल्लंघन करके आगे बढ़ते हैं। आपको थोड़ी बात बता दें, आप कौन से फ्लोर में रहते हैं? कितने? 13? हे भगवान, अच्छा 13 फ्लोर पे आप रहते हैं। तो आप घर में जाना हो तो क्या करेंगे? लिफ्ट बुलाएंगे, लिफ्ट में बैठेंगे और ऊपर जाएंगे। तो आपको ऐसा मन में आवे कि अरे ये लिफ्ट कितनी अच्छी है, मेरे को एक मंजिल के समझ लो कि 20 स्टेप्स है, मतलब स्टेप्स है, वो 13 माले के 260 स्टेप्स चढ़ना इतनी तकलीफ इन्होंने मुझसे नहीं करवाई है, लिफ्ट कितनी अच्छी है, तो इसको चलो अपन घर में लेके जाएंगे। इतनी मदद की ना, यहाँ तक लाने दिया ना हमको, वहां तो ऊपर 13 मले पे लेके गया। तो क्या हम ऐसा करेंगे तो क्या ये बात सही होगी? समझ में आए? अभी ये तो मैंने आपके लिए बताया। अभी मान लीजिए कोई बूढ़ा व्यक्ति है, 2 माले पे यहाँ ऊपर आना है, तो उसको चढ़ते चढ़ते बहुत थक जाता है, तो क्या करते है? रेलिंग को हाथ को पकड़ पकड़ कर ऊपर चढ़ता है, और अभी यहाँ अंदर घर में आना है तो कहेगा कि अरे इस रेलिंग ने तो मुझे इतनी मदद करी है, तो चलो हम इसको अंदर ले जाएंगे। तो क्या वो अंदर आ पाएगा? वैसे ही ये जो अपने आत्मा के बारे में सोचना रूप जो है विकल्प है कि मैं ऐसा हूँ, ये सारे शुभ भाव है। तो वो शुभ भाव ही हम करते बैठेंगे तो जो ये राग से रहित ऐसा अपना जो स्वभाव भाव है उसमें कब आ पाएंगे? क्योंकि उसमें आने के लिए राग को साथ में लेके हम अंदर नहीं आ सकते हैं। इसलिए कहते हैं राग से भिन्नत्व की बात आई है। इसलिए यहाँ कहा आमा व्यवहार साधन एटले शुभ राग नो निषेध आवी जाए छे। अभी तो वक्त हो गया है, कल बात हम लेंगे आगे की। जावानी के ज्ञान तय तुझे लो कालो सोवाणी मस्तकन सदा देता।